اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرتين سورة النساء آية نمبر
79 ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا
اے سننے والے تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے اور اے محبوب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بھیجا اور اللہ کافی ہے گواہ.
اب یہ کس چیز کا جواب آیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز کا جواب دیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جواب دیا ہے کہ کل کی آیت میں دیکھتی ہوں اس میں جو مجھے سمجھنا ہے کل ہے 78 اللہ کہتا ہے اے نما تکونو ید رک کم الموت ولا کن تم فی بروجم مشیدہ و تو سب ہم سیاح تم و یقول حاضی من عند اللہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا اللہ کہتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ میں سے کہہ رہا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو یا تم قلعوں میں ہو کہیں بھی ہو کہیں بھی آسمان میں ہو یا سمندر کی تہہ میں ہو تمہیں موت آ کے رہے گی موت سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہے. اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں کہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیوں کہا کہ یہ ایک موت جو ہے یہ حقیقت ہے اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. اب موت کیوں ہے اس لیے کہ موت کے بعد مرنا نہیں ہے یہ موت موت آ گئی بس دنیا کے لیے لیکن آخرت جب ہم مر گئے تو ہم زندہ ہو گئے دوبارہ موت نہیں ہے. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے یہ موت کیوں رکھی ہے میرے لیے اس لیے کہ موت کے بعد مجھے اپنا جو زندگی میں نے گزاری ہے جو اللہ نے مجھے ایک نعمت دی تھی اور پھر اس کے بعد وہ نعمت اللہ نے مجھے اپنا ایک عظیم مخلوق بنائی اور پھر مجھے زندگی دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی نعمتیں دی. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دی دوسری شکل میں قرآن دیا اپنا بات مجھے سمجھائی کہ دیکھو میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے اپنا خلیفہ بنایا ہے میں نے تمہیں تمام مخلوق پہ چنا ہے اب تمہیں کوشش کر میں تمہیں طریقہ کار بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے تم میری بات کو سنو اور وہ اللہ کی بات کیا ہے قرآن اور پھر اس کا نمونہ میں تمہیں دیتا ہوں اپنا محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے پہ چلو تو تم میرے رنگ میں رنگ جاؤ گے کیوں قرآن میں اللہ کہتا ہے صبغت اللہ میرے رنگ لے لو. تو اب مجھے کیسے پتہ چلے گا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے حسنہ سے پتہ چلے گا تو اب میں جب اس کو اللہ کی بندگی اختیار کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلوں گی تو یہ جو دنیا اللہ نے مجھے دی ہے اس لیے دی ہے کہ اس دنیا کو میں اس طریقے سے استعمال کروں کہ یہیں میں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤں. یہ دنیا قیمتی ہے یہ زندگی قیمتی ہے دنیا کی نعمتیں قیمتی ہیں ہر چیز قیمتی ہے یہی جنت ہے یہی دوزخ ہے یہی اللہ ہے یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں کچھ نہیں ہے وہاں چٹیل میدان ہے وہاں تو صرف نتیجہ ہوگا اور فیصلہ ہوگا. تو جو کچھ میں کر رہی ہوں اس کو مجھے نتیجے کو دیکھنا ہے کہ میرا اس کا نتیجہ قبر میں کیا نکلے گا اور آخرت میں کیا نکلے گا. تو یہ موت اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اچھا دوسری اس کی شکل یہ ہے کہ تمہیں موت سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ موت کو سامنے رکھنا ہے کیونکہ موت آئے گی پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا. تو تم ابھی سے سوچ لو کہ موت تمہیں آئے گی تو تم زندگی محتاط گزارو محتاط یعنی میری بندگی میں گزارو جس طریقے سے میں نے قرآن میں بتایا ہے اور جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے عمل کیا ہے اس طریقے سے زندگی گزارو تو پھر ختم پھر تو تم مرے نہیں پھر تو تم زندہ ہو گئے. मर भी गए लेकिन जिंदा रहे। ये अच्छा, फिर अल्लाह ताला कहता है दूसरी बात जो हम में खामी है, वइन तुसिबु सय्यातुन यकूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाह, जब हम पे नेमतें होती हैं अल्लाह की बरकतें आती हैं तो हम कहते हैं ओ अल्लाह का फजल है, अल्लाह की तरफ से अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, हैं ये हमने कह दिया। लेकिन वइन तुसिबु सय्यातुन यकूलु हाज़िही मिन इंदिक, लेकिन जब तकलीफ आती है तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे हुक्मरानों की वजह से है, ये हमारे अमीर की वजह से है, हम इसको फॉलो कर रहे थे तो इसकी वजह से आई है। अब ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उन्होंने कहा कि हमें तकलीफ़ आती है तो आपकी वजह से, क्योंकि हम आपको फॉलो कर रहे हैं इस वजह से हमें तकलीफ़ आई है। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया, कुल्लु मिन इंदिल्लाह, चाहे फ़ायदा है चाहे तकलीफ़ है सब अल्लाह की तरफ से है। एक ये फिर अल्लाह कहता है कि फमाले हाउलाइल कौम यफ़क़हूना यफ़क़हूना हदीसा, इन लोगों को क्या हुआ कि ये लोग बात क्यों नहीं समझते, अक़ल तो मैंने तुम्हें दी है, तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आ रही। अब बात हाँ अगर देखा जाए, मुझे बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, क्यों नहीं आ रही, कुरान भी है मेरे पास रसूल पाक सलम भी है, मेरे पास इस वक्त कौन नहीं है, मुझे ये नोट करना है कि मेरे पास कौन नहीं है, वक्त का इमाम नहीं है। तो अब हालांकि कुरान भी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है लेकिन वक्त का इमाम नहीं है। अब वक्त के इमाम की ड्यूटी क्या है, वक्त का इमाम क़यामत तक आएगा जिंदा शक्ल में, उसको आपको लेना है, उसकी रहनुमाई में आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, वो आपकी रहनुमाई करेगा। क्यों, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी ड्यूटी वही ड्यूटी है जो अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगाई, नबी नहीं, तस्किया नफ्स करने की, आपकी रूहानी अखलाकी पाकी बीमारियां दूर करने की। जब आप वक्त के इमाम को लेंगे और उसको सुनेंगे और उसके आगे सरेंडर करेंगे, उसको अल्लाह का नुमाइंदा समझेंगे, उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा समझेंगे, तो आप उसका कहना मानेंगे, जब उसकी इताअत करेंगे, उसकी फरमा बरदारी करेंगे, उसका अदब करेंगे, उसके कहने के मुताबिक जिंदे, तो वो आपको क्या बता रहा होगा, वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक था, वो ताबीज़ गंडे जादू करश्मे नहीं दिखा रहा होगा, वो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत आपके दिल में, आपकी रूहानी बीमारियां दूर करेगा, आपकी अखलाकी बीमारियां दूर करेगा, वो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत आपके दिल में, वो आप उसकी ड्यूटी तस्किया नफ्स तस्किया रूह सब करके अल्लाह और रसूल तक पहुंचाना है। तो अब जब हमें दुनिया की कोई नेमत मिलती है तो हम कहते हैं ओ अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जब हमें तकलीफ़ पहुंचती है तो हम अपने उस रहनुमा की कहते हैं ओ इसकी हम इसको सुनते हैं ना, अगर हम इसको ना मानते इसको ना वो करते तो हमें ना होता। तो अब इसका जवाब अल्लाह ताला दूसरी आयत में दे रहा है, अल्लाह कहता है माँ असाबा का मिन हसनत मिन इंदिल्लाह, ऐ सुनने वालों सुन लो, तुम्हें जो भी फ़ायदा मिलता है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है, अल्लाह ही देता है, फ़ायदा देने वाला नुकसान देने वाला अल्लाह है। लेकिन अल्लाह ताला दूसरी बताए वमा असाबा का मिन सैयतिम मिन नफ्सिक, लेकिन जब तुम्हें कोई तकलीफ़ आती है परेशानी आती है तो उसकी वजह तुम खुद हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास नफ्स है। तो अब जो मुझे फ़ायदा मिला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए असल है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रसूल पाक अल्लाह का पैगाम लाने वाले हैं, मैसेंजर हैं। अब जो भी फ़ायदा पहुंचेगा उनके दर से वो हमारे लिए अल्लाह तक पहुंचने का दरवाज़ा है, सीढ़ी है। अब जो भी फ़ायदा पहुंचेगा हम फ़ायदा देने वाला अल्लाह है, लेकिन ज़रिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अगर हमें कोई तकलीफ पहुंच रही है तो उसकी वजह मैं खुद हूं। अब इसमें सबसे बड़ी मिसाल मैं आप लोगों को दूं जंगे ओहद की। अब जंगे ओहद की मिसाल ऐसी है कि वो शुरू में जब लड़ाई शुरू हुई तो फतह किसे हुई, मुसलमानों की, लेकिन थोड़ी देर बाद मुसलमानों को शिकस्त हो गई। क्यों, वह उसमें यह था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त आपने सफ़े दुरुस्त करी तो आपने 50 लोगों को एक पहाड़ी पे बिठा दिया, जिन्हें नहीं मालूम मैं उन्हें बता रही हूँ, बिठा दिया और हुक्म दिया उन तीर अंदाजों को, वो तीर अंदाज थे, कि तुम यहाँ से नहीं उठना और यहीं से मुकाबला करना। नीचे वो पहाड़ी पे थे, बाकी लोग मुसलमान नीचे थे, काफिर उस साइड पे थे। तो रसूल पाक असल में फरमाया कि देखो, हमें फतह हो या शिकस्त हो, तुम्हें नीचे नहीं उतरना, ये पहाड़ी नहीं छोड़नी। अगर हमें फतह हो जब भी नहीं आना, अगर हमें शिकस्त हो जाए यहाँ तक के हमारे जिसम चील और कौवे भी खाने लगे, तुम पहाड़ी से मत छोड़ना। लेकिन क्या हुआ कि जब फतह हुई तो उन्होंने पहाड़ी वालों ने देखा, ओ सब लगे में फतह हो गई है, सब माले गनीमत बटोल रहे, सब ले रहे हैं। तो अब इनके मुंह में भी पानी आ गया कि सब ले रहे हैं, तो चलो नीचे उतरो और हम भी अपने हिस्सा लें इस माले गनीमत में से। ज़ाहिर है वो तो बहुत से माले गनीमत लेके आए हुए थे, अपने साथ साज और सामान के साथ आए हुए थे। हालांकि उनके अमीर ने कहा भी कि देखो, हुजूर ने सख्ती से मना किया है नहीं जाना, लेकिन नहीं माने का नहीं। वो देखो, तो सब माल माले गनीमत ले रहे हैं, अब तो फतह हो गई, अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हुज्जत ही रही नहीं इस पहाड़ी पर रहने की, चलो उतरो। तो अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद के, उस वक़्त खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुए थे, उनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने पहाड़ी की पीछे की तरफ से, जब उन्होंने देखा कि पहाड़ी खाली हो गई, वो पीछे की तरफ से आए और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। तो 70 सहाबा शहीद हुए और रसूल पाक सल्लम का दंदान मुबारक शरीर हुआ, सब तितर बितर हो गए। लेकिन फिर अल्लाह ताला को तो मुसलमानों को शिकस्त देनी नहीं थी, फिर अल्लाह ताला ने सब पे जो जो थोड़े बहुत रह गए थे, और फिर हुजूर ने जब आवाज़ दी तो सब फिर वापस पलट के आए। तो अब यहाँ ये क्या था, ये वो नाफरमानी थी। तो अब मुझे देखना है कि मैं कहाँ कहाँ अल्लाह और रसूल की नाफरमानी कर रही हूँ। ये है असल वो नुक्ता हमारी ज़िंदगी का, क्योंकि ये ज़िंदगी में अगर मैं अपनी मर्ज़ी से गुजारूंगी तो फिर मैं तकलीफ़ में रहूंगी। मैंने अल्लाह को, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, पैदा करके मुझे खुला नहीं छोड़ दिया। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं तुम्हें पैदा किया है एक मकसद के लिए पैदा किया, इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें अपना महबूब दूंगा और उसके साथ मैं तुम्हें अपनी हिदायत दूंगा। तो कुरान की शक्ल में हिदायत आ गई। अब मैं सारी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारी तो मैं तकलीफ़ में हूँ, तो इसमें अल्लाह ने कौन सा, अल्लाह कहता है मैं तो ज़ालिम नहीं हूँ, सारी जो तकलीफ़ें पहुँच रही हैं वो तुम्हें अपनी वजह से पहुँच रही हैं, लेकिन अगर कोई करम, कोई फ़जल, कोई नेमतें मिल रही वो मेरी वजह से। अब इस, अब जो फजल दुनिया, हम फजल किसे समझते हैं, दुनिया के माल दौलत, मोटर गाड़ियाँ, अच्छा शौहर, ये वो, इन चीज़ों को समझते हैं, हालांकि ये असल फजल नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया लिख दी है, ये तकदीर का हिस्सा है। असल फजल दुनिया का क्या है, वो नफ्से मुतमईना, इत्मीनान, सुकून, कुछ भी नहीं है, खुश हैं, बीमार हैं खुश हैं, परेशानी कोई परेशानी नहीं, कोई गम नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं कि तकलीफ़ में है, जब भी खुश हैं, खुशहाली है, जब भी मुतमईन है, कोई परेशानी नहीं है। और ये सब की किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। क्यों कि कौन दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। अगर दुनियावी उससे देखा जाए तो जो कुछ भी हमारे पास नेमत है, इसमें हमारा कोई तो कमाल नहीं है। आज अगर हमसे अल्लाह ताला आंखें ले ले, हाथ ले ले, पांव ले ले, दिमाग ले ले, तो हमारे पास कुछ रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जो कुछ है अल्लाह का है। अगर हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है। ये अल्लाह की वो दीवी तौफीक है, ये वो अल्लाह की दी वो अक़ल है, वो सलाहियत है, वो ये सब उसी का काम है। तो जो कुछ भी नेमत, हमेशा बेहतरीन इंसान वो है जो जो उसे नेमत मिले वो उसको अल्लाह की तरफ से समझे, और जो उसे तकलीफ़ मिले वो अपने में ढूंढे कि मैं कहाँ गलती कर गया, मैं कहाँ अल्लाह और रसूल को नाराज़ कर गया, कहाँ मैं अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ पहुँचा गया, जिसकी वजह से ये रद्द अमल आया। तो यहाँ अल्लाह ताला ने मुझे इस तरीके से बताया। फिर अल्लाह ताला इन्होंने रसूल पाक सल्लम को इल्ज़ाम दिया कि आपकी वजह से तकलीफ़ पहुँची, तो अल्लाह ताला अब उसका भी जवाब दे रहा है। वमा अरसलनाका लिन्नासि रसूलन, अल्लाह कहता है कि मैंने रसूल पाक सल्लम, मैंने आपको तो एक मैसेंजर के तौर पर भेजा है, एक मेरा पैगाम लेके गए हैं। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मैं कर रहा हूँ, لیکن میرا پیغام آپ لے کے گئے ہیں قرآن کی شکل میں میری مخلوق کی طرف, تو مخلوق کو جو فائدہ پہنچے گا وہ میں آپ کے ذریعے, جو آپ کا کہنا مانے گا, جو آپ کی اطاعت کرے گا, میں اس کو آپ کے ذریعے سے فائدہ پہنچاؤں گا. ڈائریکٹ فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیں. ہم تو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے, یہ ہماری بے وقوفی ہے. کیوں اللہ کے لیے ڈائریکٹ کے لیے مشکل تھا کہ سبھی کو قرآن پکڑا دیتا, پھر 144,000 پیغمبر کی ضرورت کیا تھی, اور قیامت تک جو یہ اللہ تعالیٰ وقت کے امام بھیجے گا ان کی کیا ضرورت تھی. لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہم سے, ہر چیز میں حکمت ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا اور یہی طریقہ بہتر ہے. اللہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے, ایک عظیم ہستی ہے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو ظاہر ہے ہم اس کے سامنے کیسے جا سکتے ہیں, ہم تو پلیت ہیں, پلیت مٹی سے بنے, پلیت نطفے سے بنے. تو اب اس کو پاک کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتظام کیا اپنے محبوب کے ذریعے سے, اور پھر مجھے قرآن دیا ہے. تو اب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یا وقت کے امام پر کوئی ذمہ دار الزام عائد نہیں کر سکتے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا. اللہ کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ڈیوٹی تھی کہ اللہ کا پیغام پہنچائے, وقت کے امام کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائے. بس جو کچھ فائدہ اور نقصان مل رہا ہے اللہ کی طرف سے, فائدہ اللہ کی طرف سے ٹوٹلی, نقصان میرے اپنے اندر ہے. میں غلط ہوں, میری سوچ غلط ہے, میرا طریقہ کار غلط ہے, میرا عمل غلط ہے, میں اللہ اور رسول سے دور ہوں. اور پھر اگر میں اسی طرح کہوں گی کہ تمہاری وجہ سے ہوا تو اللہ کہہ رہا وکفا باللہ شہیدہ, میں کافی ہوں آپ کی گواہی کے لیے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرما رہا میں کافی ہوں کہ تم میرے رسول ہو, مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہارے لیے کافی ہوں کہ تمہیں میں نے بھیجا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے
وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا.
جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا, اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا.
اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا, کیا وَمَن يَتِيُ الرَّسُولَ, جس نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, فقد اطاع اللہ, وہ آٹومیٹک اللہ کی اطاعت ہو گئی. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میرے محبوب کی اطاعت کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم ڈائریکٹ میری اطاعت کرو. تو یہ نقطے کی سمجھ نہیں ہے, اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کریں گے ڈائریکٹ اللہ کی اطاعت ہو جائے گی, ہم وقت کے امام کی اطاعت کریں گے ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت ہو جائے گی. یہ نقطہ آپ لوگ یاد رکھیں. اچھا وما تولا فما ارسل اللہ کا علیہم حفیظ, اللہ کہتا ہے اگر کوئی آپ کا کہنا نہیں مان رہا تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں نے آپ کو ان کے اوپر کوئی تھانے دار یا کوتوال بنا کے تو نہیں بھیجا کہ خامہ خواہ آپ ان سے میرے قرآن پہ عمل کروائیں گے یا میری باتوں کو منوائیں گے, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام تو صرف میسیج پہنچانا ہے, میرا پیغام پہنچانا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بے فکر ہو جائیں, آپ نے اپنی ڈیوٹی دے دی, آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مانے ان کا فائدہ نہیں, مانے ان کا نقصان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فیصلہ سنا دیا, اب مجھے دیکھنا ہے کہ میں کس کا کہنا مان رہی ہوں. میں کہیں اپنا کہنا تو نہیں مان رہی, اپنے نفس کا کہنا تو نہیں مان رہی, کہیں میں نے اپنے کو میں تو نہیں بنایا کہ میری مرضی, میری میں جو کہوں گی, میری حیثیت ہے, میرا یہ ہے, میرا مال ہے, میری یہ ہے, میری عزت ہے, میری عزت ہے, میں لڑکی ہوں, میں بڑی ہوں, میری دولت ہے, میرا نام ہے, میرا علم ہے, یہ سب یہ میں یہ میں کیا ہے, یہ ہم نے اللہ کہتا ہے میں, تو میں نے اب اللہ کو ہٹا کے اپنے کو بٹھا لیا ہے. جب تک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانوں گی میری یہ میں ختم نہیں ہوگی. تو مجھے اگر یہ میں ختم کرنی ہے تو مجھے اپنے نفس پہ پیر رکھنا ہوگا, اپنی مرضی پہ پیر رکھنا ہوگا. مجھے کس کی مرضی سننی ہے, اللہ کی. کس کی مرضی سننی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجھے زندگی صبح سے شام تک اللہ اور رسول کی رضا کو دے, کہ وہ کیسے راضی ہوں گے. میں دنیا والوں کو راضی کر رہی ہوں, دنیا والے راضی ہی نہیں ہو رہے. और ना होंगे कब, ये याद रखें, कभी याद ना पैसे से याद राजी होंगे, ना खिदमतों से राजी होंगे, ना किसी से राजी होंगे। ज़रूर कुछ ना कुछ, कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी खुशामदें कर लो, कितनी भी खिदमतें कर लो, कभी नहीं खुश होंगे। क्यों? इसलिए कि हमारी नीयत ख़राब है। हम लोगों के लिए कर रहे हैं, और लोगों के लिए हम क्यों कर रहे हैं? हमारा उनसे मफाद है, हम उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हम उन्हें कुछ समझते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मैं उनसे उम्मीद रख रही हूँ, मेरा उनसे कुछ मफाद है। तो हालांकि करने वाला तो अल्लाह ही है, इज्जत वो भी देने वाला है, दौलत भी वो देने वाला है, रिज़्क भी वही देना, मोहब्बत भी वही देता है, सब कुछ इसी के हाथ में। अब मैंने उसको, अल्लाह को एक साइड पर रख के शौहर को बिठा दिया है, भाइयों को बिठा दिया है, बेटों को बिठा दिया, दुनिया को बिठा दिया, अपनी जॉब को बिठा दिया, अपनी दौलत को बिठा दिया, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं शिर्क कर रही हूँ, और इसे कहते हैं शिर्क खफी। तो अब मुझे इस शिर्क से निकलना है। अब मुझे हर काम को देखना है कि क्या मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रही हूँ। नियत को चेंज कर दें, बिल्कुल टोटली नियत को चेंज कर लें। आइंदा से ज़िंदगी को जो गुजारें तो सोचें कि जो मैं करूँगी अल्लाह तेरी रजा तेरे हुक्म के मुताबिक, क्योंकि कुरान में तो एक एक नुक्ता मुझे दिया पूरी ज़िंदगी गुजरने का, सुबह से शाम तक, पैदाइश से लेकर मौत तक, हर लहमे का अल्लाह ताला ने मुझे तरीका बताया है कि ऐसे करो ऐसे करो। शौहर बनोगे तो ये करोगे, बीवी बनोगे तो ये करोगे, बच्चे बनोगे तो ये करोगे, माँ बाप बनोगे तो ये करोगे, नौकरी करोगे तो ऐसे करोगे, जायदाद बनाओगे तो ऐसे करोगे, माल दौलत कहोगे ऐसे, खाओगे तो ऐसे खाओगे, सोओगे तो ऐसे करोगे, मियाँ बीवी के ताल्लुकात होंगे तो ऐसे होंगे। कौन सा चीज़ है जो अल्लाह ने मुझे छुपा दी है? मुझे तो सब बता दिया, लेकिन मैं अपनी मर्जी कर रही हूँ तो मैं खुश नहीं हूँ, और खुश होंगी भी नहीं। अल्लाह एक जगह कहता है कुरान में कि कायनात में मेरी मर्जी चल रही है, और तुम मेरी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी चला रहे हो, तुम थक जाओगे, तुम्हारी मर्जी पूरी नहीं होगी, मर्जी मेरी ही पूरी होगी। और यही हो रहा है, मैं इस वक्त खुश नहीं हूँ। अब हम मुझे इस उसमें मुझे अपने आप को देखना है, अगर मैं खफा हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती, मुझे लोग अच्छे नहीं लगते, मुझ में बर्दाश्त नहीं है, मुझ में गुस्सा है, मुझ में हसद है, मुझ में कीना है, मुझ में बुग़्ज़ है, मुझ में दुनिया की लालच है, मुझ में दुनिया की नफ़रत है, तो मैं बीमार हूँ। मैं बीमार हूँ, रूहानी जिस्मानी दोनों बीमार हूँ। तो मुझे चाहिए एक रूहानी डॉक्टर। रूहानी डॉक्टर कौन होता है? जो अल्लाह और रसूल के आगे सरेंडर कर चुका हो, जो अल्लाह और रसूल के रंग में रंग चुका हो, वो रूहानी डॉक्टर नहीं जो ताबीज़ गंडे और वजीफे और ये कर लो और कशव करामात दिखा, नहीं, जो मेरे अंदर से ज़िंदगी को बदले, मेरी सोच को बदल जाए, मेरे तरीक़ेकार को बदल जाए, मेरे सुबह से शाम को बदल जाए, हर वक्त मुझे मेरे दिल और दिमाग में अल्लाह ही अल्लाह को बिठा दे, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की चाहत, दुनिया एक साइड पे हो जाए। दुनिया में ही रहूँगी, दुनिया से बाहर नहीं निकलूँगी, सारे दुनिया के काम करूँगी, किसी गार में नहीं जाऊँगी, इन तमाम लोगों के साथ रहूँगी, कहीं और नहीं भागूँगी, लेकिन नहीं रहूँगी। तो अब इसके लिए मुझे अंदर से चेंज करने के लिए मुझे रूहानी डॉक्टर चाहिए। उसे आप रूहानी डॉक्टर कहें, उसे आप मुर्शिद कहें, उसे आप उस्ताद कहें, उसे आप पीर कहें, उसे आप शेख कहें, जो भी लकब दे दें, लेकिन हर एक को इसकी ज़रूरत है, और इसके बगैर हो ही नहीं सकता कि हम अल्लाह तक को अपने को पहचान सके, ना हम अपने को पहचान सकेंगे, ना अल्लाह को पहचान सकेंगे, ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकेंगे, और ना हम कुरान से फ़ायदा उठा सकेंगे, ना हम अपने मुसलमान होने से फ़ायदा उठा सकेंगे। इस वक्त तो हमारे मुसलमानों की हमारी हालत यह है कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम हैं मुनाफिक, और हम मुनाफिक की जगह दोजख नहीं है, दोजख का गढ़ा है, जिससे दोजख दिन में 70 दफ़ा पना मांगती है, वहाँ मुसलमान जाएगा जो हम जैसा मुसलमान है। तो मुझे अपने को चेंज करना है, हर एक कोशिश करो अपने को चेंज करो, क्यों कि ज़बरदस्ती तो नहीं है। अल्लाह ताला ने तो कह दिया कि मैंने कोई कोतवाल बनाकर, ये थानेदार बनाकर आपको नहीं भेजा, आपको सिर्फ पैगाम पहुँचाना है, और यही पैगाम क़यामत तक वक्त के इमाम आते रहेंगे और वो पहुँचाते रहेंगे। अब जिसका जी चाहे वो ले ले, मर्ज़ी तो अपनी है, ज़बरदस्ती तो है ही नहीं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
اور کہتے ہیں ہم نے حکم مانا پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ جو کہہ گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے گانٹتا ہے اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو.
غیر الذی تقول اللہ کہتا ہے ویقولون جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اب یہ ہماری حالت اللہ بتا رہا ہے آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن جب آپ سے دور ہو جاتے ہیں آپ کی مجلس سے نکل جاتے ہیں تو اپنے اس گروپ کے پاس چلے جاتے ہیں جن سے ان کی دلی دوستی ہے ان سے جا کے جو آپ نے بات کہی ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ بات نہیں کرتے جو حضور نے کہا اس کے خلاف بات کرتے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں. کیا منصوبے بناتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے یہ تو انہونی کہہ رہا ہے یہ تو جادوگر ہے یہ تو یہ ہے یہ تو یہ ایسے تو نہیں ہوتا اس طریقے سے تو نہیں ہوتا یہ آسان کام تو نہیں ہے بہت مشکل کام ہزاروں چیزیں ہیں جو ہم بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے واللہ یکتب ما یبیتون میں لکھ رہا ہوں کہ جو تم کہہ رہے ہو جو منصوبے بنا رہے ہو وہ میں لکھ رہا ہوں تو اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا اور وقت کے اماموں کو تسلی دے رہا فاعرض عنہم آپ ان سے جو آپ کو یہ اب ظاہر ہے ایک مجلس میں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں اور اس کے عمل اس کے خلاف کر رہے ہیں تو تکلیف نہیں ہوگی تو اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کے امام کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ فکر نہیں کریں آپ ان سے منہ پھیر لیں یعنی درگزر کریں جو کہہ رہے ہیں جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں وتوکل علی اللہ آپ اللہ پہ توکل کریں اللہ نے آپ کو مقرر کیا آپ ان سے کوئی امید مت لگائیے وکفا باللہ وکیلا میں آپ کے لیے کافی ہوں اللہ یہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ والوں سے کہہ رہا ہے جو بھی اللہ سے تعلق رکھے گا یہ یاد رکھیں اللہ والے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص وہ کیے ہیں کئی قسم کے ہوتے ہیں لیکن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا جو بھی کوشش کرے گا جو محنت کرے گا وہ اللہ والا بن جائے گا آپ لوگ بھی کوشش کریں محنت کریں اپنی ضد چھوڑ دیں اپنی انا کو چھوڑ دیں اللہ کو لے لیں اللہ کے حکم کے مطابق ہر وقت زندگی گزاریں صبح سے شام تک قرآن و سنت کے مطابق آپ بھی ولی اللہ ہو جائیں گے آپ بھی اللہ والے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو مت دیکھو لوگوں کے چہروں کو مت دیکھو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں ان کو مت دیکھو پیغام پہنچانا ہے پیغام پہنچا دو اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو درس میں بیٹھی ہو تو درس سن رہی ہو تو اب اس پہ عمل کرو بجائے اس کے کہ درس سن لیا اور درس سے جب آپ باہر نکلے اپنے دوست احباب میں گئے تو پھر آپ نے اور باتیں شروع کر دیں جو درس کے خلاف ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں اس وقت ہے کہ ہماری یہی صورت حال ہے تو اللہ کہہ رہا ہے میں لکھ رہا ہوں منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ لکھی جاتی ہے تو منہ سے جو بات نکلے گی وہ لکھی جائے گی کیا انہی کی لکھی جائے گی ہماری نہیں لکھی جائے گی ہماری بھی لکھی جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اب کوئی ضرورت نہیں ہے دوسروں کو دیکھے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے سیدھا راستہ لے لیا اللہ اور رسول کا اب تمہیں دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے لیے کافی ہوں اب اللہ تعالیٰ مجھے اطمینان دلا رہا ہے مجھے اور آپ کو اطمینان اگر آپ نے لوگوں نے لے لیا ہے اللہ اور رسول تو اللہ تعالیٰ کسی کو مت دیکھو اپنے مستقل مزاجی سے اللہ اور رسول کے اپنے وقت کے امام کی رہنمائی میں چلتے رہو میں تمہارے لیے کافی ہوں किसी की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। जिसने अल्लाह को ले लिया उसको फिर किसकी जरूरत है? जो अल्लाह को हो गया, अल्लाह तो कहता है कि जो मेरा हो गया मैं उसका हो गया। तो यहाँ अल्लाह ताला देखें, अल्लाह की मोहब्बत को देखें, अल्लाह ताला मुझसे कितना कितनी शदीद मोहब्बत करता है कि हर जगह अल्लाह ताला मेरे मेरे तहफ्फुज में आ रहा है। लोग मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह का रास्ता लाए, लेकिन लोग उसमें तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। हम तो अल्लाह ताला तसल्ली दे रहा है, छोड़ दो इनके हाल पे, तुम्हारे लिए मैं काफी हूं। तो ये अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम सबको कह रहा है, जो भी अल्लाह का रास्ता लेगा और रास्ते में जो रुकावटें परेशानियां आएंगी तो उससे परेशान मत हो, दरगुजर करो, छोड़ दो, उनको माफ कर दो, उनको अस्सलाम अलैकुम कह के गुजर जाओ, अपने रास्ते पे मुस्तकिल मिजाजी से चलते रहो, उससे उससे पीछे मत हटना, मुस्तकिल मिजाजी से उस रास्ते को पकड़े रहो। क्यों? कि हमने अल्लाह को लिया है। हमने किसको लिया है? अल्लाह को लिया है। अब मेरे लिए, अब मुझे ये यकीन अपने में पैदा करना है कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मैं अब जो जिंदगी गुजारूंगी अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारूंगी, अपनी मर्जी मैंने छोड़ दी, मैंने अल्लाह की मर्जी ले ली, मैंने रसूल पाकसल्लम की, अब मैं कुरान और सुन्नत, अब अच्छा जब मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी तो आप मुझे ये बताइए क्या मैं अपने शोहर की वफादार नहीं होंगी? क्या मैं अपने शोहर की इज्जत नहीं करूंगी? क्या मैं अपने शोहर से मोहब्बत नहीं करूंगी? क्या मैं अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करूंगी? क्या अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करूंगी? क्या मैं अल्लाह वालों से मोहब्बत नहीं करूंगी? अल्लाह ताला तो मुझे यही तो सिखा रहा है, लेकिन इधर मेरा नफ्स मुझ पे हावी है तो मुझे कोई नहीं अच्छा लग रहा। मैं हर एक से अपने मफाद के तहत मोहब्बत कर रही हूँ। अगर मैं शौहर की खिदमत कर रही हूँ तो उसमें भी मेरा मफाद है, माँ बाप की खिदमत कर रही हूँ उसमें भी मेरा मफाद है, मैं दुनिया जो कमा रही हूँ उसमें भी मेरा मफाद है। तो हर जगह तो मैंने अपने को खड़ा किया हुआ है। जब तक मैं अपनी जात की नफी नहीं करूंगी अपने अल्लाह और रसूल के आगे, बात नहीं बनेगी, मेरे मुसलमान होने का फायदा भी नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है,
अफला यतदब्बरून अल-कुरान वलौ काना मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा।
तो क्या गौर नहीं करते कुरान में, और अगर वो गैर खुदा के पास से होता तो जरूर उसमें बहुत इख्तलाफ पाते।
अब अल्लाह कह रहे अफला तत्वही है, ये तदब्बरून अल कुरान, कुरान में गौर फिक्र क्यों नहीं करते? अब ये अल्लाह ताला मुझे कह, हर वक्त हर दूसरी आयत में अल्लाह कह रहा है गौर फिक्र क्यों नहीं करते, अकल से काम क्यों नहीं लेते, आंखें क्यों नहीं खोल रहे, दिमाग, अल्लाह ताला कह रहा मैंने ये तुम्हें अकल इसीलिए दी है कि तुम इसको मेरे लिए इस्तेमाल करो। मैंने काय में लगाई है? दुनिया के इस्तेमाल में, दुनिया की तलाश में। मैं अल्लाह को तलाश कर रही हूँ, नहीं डर कर रही। तो अल्लाह कह रहा कि तुम्हें गौर फिक्र करो कुरान में, मैं किस में, मैं लोगों को दौलत में, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या, मैं इसमें गौर व फिक्र, ये मेरी नज़रें, मेरा गौर व फिक्र सब उसमें कि कैसे पैसे कमाऊंगी, कैसे दौलत कमाऊंगी, कैसे घर बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, जेवर बनाऊंगी, इन तमाम चीज़ों में मेरा जहन पड़ा हुआ है। कैसे मैं सास को शिकस्त दूंगी, कैसे मैं नंदों को शिकस्त दूंगी, कैसे मैं शोहर को अपने कंट्रोल में करूंगी, मेरा दिमाग इसमें पड़ा हुआ। हालांकि अल्लाह मुझे कह रहा है कुरान में तदब्बुर करो, और अल्लाह कह रहा है ये बात याद रखना, वलौ काना मिन इंद गैरिल्लाह लवजदुल्लाह फीह इख्तिलाफिल कसीरा। कुरान में हर जगह अल्लाह की तमाम आयतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये नहीं है कि अल्लाह का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान नहीं बनाया हुआ या किसी और का कुरान नहीं, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, इसमें कोई नुक्ता एक दूसरे से तजाद नहीं रखता। ये तो हम समझते नहीं है, तो इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। जब हम उसमें गौर और फिक्र करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सब एक लड़ी में प्रयोग है, और हर चीज में नुक्ते हैं, हिकमत है, रोशनी है। तो जब उसको मैं लूंगी, उसमें मैं गोते लगाऊंगी, गौर और फिक्र करूंगी, तो मैं ये मोती मिलेंगे ना, ऐसे तो नहीं मिलेंगे। जबानी तोतों की तरह जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम डबल मार्च करते हैं रमज़ान में, ऐसे तो नहीं मिलेगा। या हम तफसीरें पढ़ाएं, ये पढ़ा नहीं, ये कुरान की समझ हमें कैसे आई कि अब ये नुक्ता भी मैं आपको बता दूं। कुरान की समझ आप कितने भी तर्जुमे पढ़ लें, कितनी भी तफसीरें पढ़ लें, कितने भी मुफ्तियों की सोहबत में बैठ जाएं, आपको कुरान समझ में नहीं आएगा। इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान को समझने के लिए अल्लाह ताला ने अपने वक्त के इमाम मुकर्रर किए हुए हैं। अब मुझे नज़र नहीं आ रहे उस वक्त के इमाम को, वली अल्लाह कहिए, शेख कहिए, मुर्शिद कहिए, जो कुछ भी नाम दे दें, उस्ताद कहिए, रूहानी डॉक्टर कहिए, अब मुझे नज़र नहीं आ रहे। क्यों? कि मेरी तलब नहीं है। जिस दिन मेरे अंदर ये तलब पैदा हो गई कि मुझे वक्त का इमाम चाहिए, मुझे ये कुरान को समझना है, मुझे अल्लाह को जानना है, मुझे अल्लाह से मुलाकात करनी है, मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठना है, मुझे जन्नतुल फिरदौस में जाना है, तो जब मेरी तलब बढ़ेगी तो फिर मेरी तलाश बढ़ेगी, मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगी, अल्लाह मेरे सामने ले आएगा। अब वो जब मैं मेरे सामने आ जाएगा, मैं उसको कुरान और सुन्नत से टैली करूँगी, उसके अमल को, उसके भार को, उसके घर के माहौल को, उसके आने जाने को, उसके हर चीज़ को, कुरान जो मेरी इल्मी इस्तेदाद है उसके मुताबिक। मैं उसके कशफ व करामात नहीं देखूँगी, मैं उसके ये नहीं देखूँगी कितने मुरीद हैं, ये भी नहीं देखूँगी, मैं ये देखूँगी कि जो वो बात कह रहा है क्या वो अल्लाह और रसूल की बात है और उसके अमल और फेल में तजाद तो नहीं है, तो वो मैंने कुरान से किया। फिर उसके बाद मैं उस जब मुझे यकीन आ जाएगा, जाहिर है अंदर से ये यकीन की कैफियत पैदा होती है, यकीन आ जाएगा तो फिर मैं उसको अपने एक उस्ताद की हैसियत से लूँगी। अब उस्ताद का के हैसियत से लूँगी तो अब वो मुझे जो कहेगा, पहले मैं अपने आप को उस्ताद के रंग में रंगूँगी, उसके मिजाज को समझूंगी, उसकी तबीयत को समझूंगी, उसके उठने बैठने को समझूंगी, उसको लूंगी, उसके खाने पीने को जानूंगी, उसके उठने बैठने को जानूंगी, सब जब उसके रंग में रंग जाऊंगी तो वो आगे फिर उसका रंग क्या है, अल्लाह का रंग है, उसका रंग क्या है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग है, तो फिर वो आगे जब मुझ में ये सलाही और उसके आगे मैं सरेंडर कर दूंगी, यानी कि तू है मैं नहीं। अब जैसे अल्लाह अल्लाह का वो नुमाइंदा है, अब वो मुझे तालीमात जो दे रहा है अल्लाह ही की दे रहा है, वो खुद ये नहीं कह रहा कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ मैं ये हूँ, नहीं, वो ये कह रहा है अल्लाह ये चाहता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, तो वो मुझे उस तरीके से मेरी तरबियत करेगा, मेरे मुझ में जो रूहानी बीमारियां उसको दूर करेगा, वो मुझे वो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उसके आधे तन मन धन हर कुछ उसके कदमों में रख दूंगी, सब कुछ उस पर कुर्बान कर दूंगी, तो वो फिर मुझे आगे लेके जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है आगे,
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار